आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 11। इस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। ये एक रेखा चित्र है। तो स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेखा चित्र क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को याद करके हम उसके बारे में लिखते हैं, है ना, कि वो दिखने में कैसा था, उसकी आदतें कैसी थी, उसका जीवन कैसा था, तो वो होता है रेखा चित्र, है ना। उसका रंग रूप, वेशभूषा, सब कुछ हमें बताना होता है और फिर हम उसके बारे में कोई एक घटना जो हमें याद आती है उसका वर्णन करते हैं, तो ये हो जाता है रेखा चित्र। रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो लेखक परिचय के लिए आप लोग पेज नंबर 68 पर आ जाइए। शुरू करती हूँ। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बोनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। तो बच्चों, ये जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव है बेनीपुर, वहीं पे। कब हुआ था? सन 1899 यानी 1899 में। जब ये छोटे थे तभी इनके जो माँ बाप थे उनका देहांत हो गया था, इसीलिए इनका जो शुरुआती जीवन रहा वो काफी कठिन रहा, है ना। इन्होंने थोड़ा कुछ गरीबों में दिन बिताए, कमियों के साथ इन्होंने अपना बचपन बिताया, काफी कठिनाई हुई और बहुत ही संघर्ष इन्होंने जीवन में देखे थे। दसवीं तक की शिक्षा पाने के बाद यानी जब इनका 10th हो गया था, उसके बाद 1920 में वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, क्योंकि उस समय देश की आजादी के लिए बहुत से आंदोलन चल रहे थे, तो इन्होंने भी ऐसे ही एक आंदोलन में भाग लिया और उसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। 1968 यानी 1968 में इनका देहावसान हो गया, इनका निधन हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बेनीपुरी जी थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही अच्छे पत्रकार थे और 15 वर्ष, मात्र 15 वर्ष की आयु यानी लगभग आपकी उम्र में इनकी जो रचनाएं थी, कविताएं, कहानियां, ये सब चीजें इनकी पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्र में या कुछ पत्रिकाओं, मैगजीन्स में छपने लगी थी। उसके बाद जब ये पत्रकार बन गए तो इन्होंने बहुत से जो पत्र पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र या पत्रिकाएं, उनका संपादन किया। जैसे कुछ नाम दिए गए हैं, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। तो इन्होंने जो भी रचनाएं की है ना, वो सारी किस नाम से प्रकाशित हैं? बेनीपुरी रचनावली। और ये 8 खंडों में यानी 8 हिस्सों में है और इनकी कुछ रचनाएं भी आपको दी गई हैं। इन्होंने गद्य की लगभग सारी विधाओं में लिखा। देखिए, उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखा, रेखा चित्र लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, संस्मरण लिखा, सारी विधाओं में इन्होंने अपनी कलम को आजमाया। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही विविधता से भरी होती है ना, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी होती है। साथ ही इनकी शैली बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही खास है, एक अलग शैली में ये लिखते हैं। इनकी रचनाओं में हमें स्वाधीनता की चेतना मिलती है ना, आजादी के प्रति जो जागरूक करे, मनुष्यता यानी इंसानियत इंसान में बनी रहे, और इतिहास की जो व्याख्या है, इतिहास हमारा कैसा था, वो भी सारी चीजें इनकी रचनाओं में मिलती हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 69 पर। यहाँ पे पाठ के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है, देखिए। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये जो बाल गोविंद भगत है, ये एक रेखा चित्र है, और ये रेखा चित्र लेखक ने किसके बारे में लिखा है, एक बहुत ही विलक्षण चरित्र है ना, यानी एक अलग इंसान, एक खास इंसान के बारे में लिखा है, जो किसका प्रतीक है, मनुष्यता यानी इंसानियत, लोक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है और सामूहिक चेतना, इस सब का वो प्रतीक है। उनको जानने के बाद पता चलता है कि जो वेशभूषा यानी जो कपड़े हैं या बाहरी जो आडंबर करते हैं, नाटक करते हैं, उनसे कोई भी सन्यासी या साधु नहीं बन जाता, बल्कि सन्यास का आधार क्या होता है, मानवीय सरोकार है ना, आपके जो नैतिक मूल्य हैं वो ऊंचे रहें, आपके कर्म अच्छे रहें, तभी आप सन्यासी बन सकते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो जैसा कि लेखक मानते हैं कि कोई अपने रूप के आधार पर है ना, अपने बाहरी दिखावे के आधार पर सन्यासी नहीं हो सकता, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर होता है, अपने जीवन के आधार पर होता है। तो उसी हिसाब से जो बाल गोविंद भगत हैं, उनके कर्म ऐसे थे कि लेखक को वो सन्यासी लगते हैं। जो हमारी सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो रूढ़ीवादी सोच है ना, बुरी परंपराएं हैं, उन पर भी इस पाठ में प्रहार दिखता है। और क्या बताते हैं रेखा चित्र की क्या विशेषता है, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के एक किरदार, एक चरित्र हैं, तो जिससे कि हमें ग्रामीण जीवन की भी झांकी देखने को मिलती है, हमें समझ में आता है कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है। पेज नंबर 70 पे आ जाइए, पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तो देखिए, पहले यहाँ पे जो वर्णन किया है लेखक ने भगत जी का, वो कैसे किया है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, यानी उनका रंग जो था वो गोरा था, और मझोला कद यानी ना तो बहुत ज्यादा लंबे थे और ना ही बहुत ज्यादा छोटे थे, बीच के कद के आदमी थे। उम्र उनकी 60 से ज्यादा की थी, बाल पक गए थे यानी बाल उनके सफेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, यानी जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो होता है ना, लंबी लंबे बाल रखने लगते हैं, जटाएं जैसी बहुत बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, वो सब उनके नहीं थे, लेकिन उनका जो चेहरा था वो सफेद बालों से जगमग किए रहता था, यानी उनके बाल और उनकी दाढ़ी सब सफेद हो गई थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे, क्या पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर एक कबीर पंथियों की सी टोपी, ठीक है, जैसे कबीर के अगर आप कभी कोई चित्र देखेंगे या कबीर के जो अनुयायी हैं उनके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी टोपी होती है, वही वो टोपी पहनते थे और एक लंगोटी पहनते थे। जब जाड़ा आता था यानी सर्दियों के मौसम में, बस उसी के ऊपर से काली कमली यानी पतला सा कंबल आप समझ लीजिए वो पहन लेते थे बस, और माथे पे उनका एक हमेशा रामानंदी चंदन यानी तिलक लगा रहता था चंदन का, जो नाक के छोर से शुरू होके पूरा ऊपर तक जाता था, और गले में तुलसी की बेडौल माला बांधे रहते थे, ठीक है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, अब वो कह रहे हैं लेखक कि जैसा चित्र मैंने प्रस्तुत किया है ना, जैसा मैंने उनका वर्णन किया है, तो उससे आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई साधु थे। बस उनका रहने का तरीका साधु जैसा हो सकता है, लेकिन नहीं, वो गृहस्थ थे, आराम से घर परिवार वाले व्यक्ति थे। उनकी जो गृहिणी थी यानी उनकी जो पत्नी थी, उनके बारे में तो याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू यानी जो बेटा और जो उनकी बहू थी, वो लेखक को याद है। और वो बता रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, यानी गांव में जब हमारी जमीन होती है, लोग खेती वगैरह करते हैं ना, वो भी उनके पास थी। और एक अच्छा साफ घर भी था, मकान यानी घर भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज न छूते, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से चार कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजार चलाते। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं कि वैसे तो वो साधु नहीं थे, है ना, खेतीबाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, सब कुछ एक आम इंसान जैसे ही करते थे, लेकिन फिर भी वो साधु थे। अब वो लेखक भगत जी को साधु क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि साधु की जो परिभाषाएं होती है, यानी साधु में जो गुण होने चाहिए, वो सारे के सारे गुण भगत जी में थे। जैसे वो कबीर को साहब मानते थे ना, कबीर को मानते थे, उनके अनुयायी थे, उन्हीं के गीतों को दोहों को गाते थे, उनके आदेशों को मानते थे, है ना, जो शिक्षाएं कबीर ने हमें दी हैं वही भगत जी भी मानते थे। जैसे कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना, ना तो किसी से बात करने में उन्हें संकोच होता था कि करूं ना करूं, क्या सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन बेवजह किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, है ना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है जबरदस्ती उलझने की, तो वो वैसा भी कुछ नहीं करते थे। किसी की चीज को बिना पूछे छूना, उसे उठा लेना या उपयोग कर लेना, ये सारा काम भी वो नहीं करते थे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे गांव में शौच के लिए बाहर जाया जाता है ना, खेत में भी जाते हैं, तो लोग एक दूसरे के खेत में करते हैं, सोचते हैं हम अपने बना करके दूसरे का खेत इस्तेमाल कर ले। लेकिन जो भगत जी थे वो हमेशा शौच के लिए भी किसी और का खेत इस्तेमाल नहीं करते थे। वे गृहस्थ थे, मतलब परिवार वाले व्यक्ति थे, लेकिन सारी चीजें साहब की थी, यानी वो हर चीज कबीर की मानते थे और उसके बाद ही वो स्वयं उसे उपयोग करना चाहते थे। जैसे जब वो खेती बाड़ी करते थे, खेत में जो भी फसल होती थी तो उसे वो दरबार में ले जाते थे, यानी जो कबीरपंथी मठ होते हैं वहां, और वहां उसे भेंट रूप में रख देते थे। फिर उसमें से जो प्रसाद रूप में उन्हें वापस मिलता था, उसी को घर लाकर वो अपनी गुजर बसर उससे करते थे, अपना काम चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब वो क्या कह रहे हैं इन सब के ऊपर, यानी भगत जी के जो गुण हैं, जो आदतें थी, उन सारी बातों पे लेखक मुग्ध थे, लेखक को बहुत अच्छी लगती थी, उनके गाने पर भी मुग्ध थे कि वो बहुत अच्छा गाते थे, साथ ही कबीर के पद जो वो गुनगुनाते थे तो उन्हें लगता था कि इनके कंठ से, इनके गले से निकलकर सजीव हो जा रहे हैं, यानी जीवित हो गए, जो पद जो शिक्षाएं हैं वो साक्षात हमारे सामने दिखाई दे रही है, केवल गाई नहीं जा रही है बल्कि जीवन में उतारी भी जा रही है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथले अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है यह जादू। अब देखिए वो वर्णन करते हैं कि एक समय आषाढ़ के महीने में, ठीक है, आषाढ़ का महीना यानी जो जून जुलाई के आसपास का महीना होता है, जून का आखिरी और जुलाई का, उसमें तो वो बारिश का महीना होता है ना, तो उसमें आषाढ़ की रिमझिम यानी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और पूरा का पूरा गांव जो है वो खेतों में उतर पड़ा है, नहीं खेतों में काम कर रहा है ना, कोई हल चला रहा है, कोई रोपनी हो रही। रोपनी होती है जब फसल को हम खेत में रोपते हैं, गाड़ते हैं, बिठाते हैं खेत में, वो तो कहीं वो काम चल रहा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं जो धान के खेतों में पानी भरा है वहां बच्चे खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, पूरा गांव एक साथ काम में लगा है। अब क्योंकि मौसम बारिश का है तो धूप भी नहीं है, आसमान में भी बहुत सारे बादल हैं, ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी वो हवा जो पूरब की ओर से चलती है उसे पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय में फिर सबके कानों में क्या आता है, स्वर तरंग, है ना, एक संगीत सुनाई देता है बहुत ही मधुर। अब किसी को भी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है और कौन है, यानी कौन गा रहा है, सबको पता है कि ये बाल गोविंद भगत ही गा रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत जो हैं, क्योंकि वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं यानी धान के पौधे लगा रहे हैं, और पानी भरा होता है धान के खेत में, बारिश का भी महीना होता है, तो उनका जो शरीर है वो कीचड़ में सन गया है, है ना, जो मिट्टी और पानी में कीचड़ हो जाती है बारिश में, उसमें सन गया है, और वो धान के पौधे खेतों में लगाते हुए एक पंक्ति से, एक लाइन में गाना गा रहे हैं। और लेखक कहता है कि उनके कंठ से यानी उनके गले से जो संगीत के शब्द सुनाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर चढ़ के स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और कुछ उसमें से स्वर हम जो लोग धरती पर हैं उनके कानों में सुनाई दे रहे हैं। उनके संगीत को सुनकर बच्चे झूम उठते हैं, खुशी से खेलने लगते हैं। जो औरतें बैठी हैं मेड़ पर वो भी गुनगुनाने लगती हैं अचानक ही। जो हल चला रहे हैं लोग, उनके पैर ताल से उठने लगते हैं। जो रोपनी कर रहे हैं उनकी उंगलियां भी संगीत के हिसाब से अलग तरीके से चलने लगती हैं। तो लेखक कहते हैं ये कैसा संगीत है बाल गोविंद भगत का, ये संगीत है या जादू, है ना, सब पे इतना गहरा असर होता है इसका कि ये संगीत है या जादू। आगे देखिए, भादो की वह अंधेरी अदरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहक उठती है। अभी इन्होंने आषाढ़ के महीने का वर्णन किया था, उसके बाद सावन का महीना आता है, और सावन के महीने के बाद भाद्रपद का महीना आता है, जिसे हम देशी भाषा में भादो का महीना भी कह देते हैं, है ना। तो लेखक अब बताता है कि एक बार भादो के महीने में अंधेरी अदरतिया है ना, यानी अंधेरी रात हो चुकी है, और थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा यानी जो लगातार बहुत तेज बारिश होती है ना, वो अभी अभी रुकी है, और बादलों के गरजने की आवाज में, बिजली के कड़कने की आवाज में भले ही कोई कुछ नहीं सुन पाया हो, लेकिन अब झिल्लियों की, दादरों की यानी मेढकों की टर टर, है ना, या झींगुरों की जो आवाज होती है, इस सब, ये सब जो है वो बाल गोविंद भगत के संगीत को, गाने को अब नहीं डुबो सकती, है ना, यानी अब भगत जी की आवाज तेज सुनाई दे रही है। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी यानी जैसे ढपली होती है ना, वैसे ही एक वाद्य यंत्र होता है बजाने का, वो बजा रहे हैं और साथ में गाना भी गा रहे हैं। गाना देखिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का रेखा चित्र है, तो जैसे लोक भाषा में ये गाना वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना, यानी कि हाँ पिया तो जो मेरा जो पिया है वो मेरे गोद में ही है, लेकिन फिर भी वो समझती है कि वो अकेली है, ऐसी वो चमक उठती है, चिहक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। वो क्या कह रहे हैं कि भरे बादलों वाली भादों की आधी रात, है ना, यानी पूरे आसमान में बादल ही बादल हो रखे हैं, आधी रात हो चुकी है बारिश के महीने में, और तब जो वो ये अचानक गाना गाते हैं, वो कह रहे हैं बिजली की चौंध यानी बिजली की जो चमक होती है वैसे ही किसको नहीं चौंका देते। सब आश्चर्य से उठ जाते हैं कि अरे, सारा संसार, पूरी दुनिया सो रही है, रात में सोने के समय ये अचानक भगत जी को क्या हुआ? खुद भी जाग रहे हैं, सबको जगा भी रहे हैं और गाना गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। आगे देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भेड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। देखिए, वो हर महीने का वर्णन कर रहे हैं, हिंदी महीनों का जो लेखक है। तो अब वो कार्तिक का महीना, ठीक है, ये लगभग अक्टूबर के आसपास आता है, इस महीने की बात बता रहे हैं कि अब उनकी प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां यानी जो सुबह सुबह गाने गाए जाते हैं, प्रभात होता है ना सुबह, तो जो सुबह सुबह गाने गाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रभातियां। और वो कह रहे हैं कि ये कार्तिक में शुरू होने वाली प्रभातियां वो फागुन तक चला करती थी, यानी फागुन के महीने तक, यानी होली के आसपास वहां तक गाया करते थे। और इन दिनों वो सुबह बहुत जल्दी उठते थे और फिर वो कहती थी पता नहीं किस वक्त, न जाने कितनी जल्दी उठकर गांव से 2 मील दूर जो नदी थी उसमें वो स्नान करके आ जाते थे, उसमें नहा धोकर आ जाते थे और वहां से नहाकर लौटते थे। गांव के पोखरे यानी एक छोटे से तालाब के पास बैठ जाते थे, अपनी खंजड़ी लेकर फिर से बजाते थे उसे और गाने गाने लगते थे। अब लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक मुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा सा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अभी खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अब वो क्या कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से देर तक सोने वाला, यानी लेखक की आदत थी कि वो सुबह देर से उठते थे, लेकिन जो उनका संगीत है भगत जी का उसमें इतनी ताकत थी कि एक दिन उन्होंने लेखक को भी अपनी ओर खींच लिया। माघ के महीने में यानी जनवरी में, आप समझिए, ठीक है, जनवरी में कितनी ठंड होती है, तो कह रहे हैं दांत किटकिटा देने वाली, यानी दांत किटकिटाने लगते हैं ना सर्दियों में, तो उतनी सर्दी में भी भोर एकदम सुबह सुबह जो बाल गोविंद भगत का संगीत था उसने लेखक को अपनी ओर खींच लिया और लेखक भी वहां पे गया। जब वो वहां गया तो कहता है आसमान के तारों के दीपक नहीं बुझे थे, यानी अभी भी आसमान में तारे दिख रहे थे और पूरब में लालिमा दिखने लगी थी, यानी सूरज उदय होने वाला था, उगने वाला था। हर तरफ कुहासा छा रहा था क्योंकि सर्दियों का महीना था, तो कोहरा सा हो रहा था और सारे वातावरण में एक अजीब सा रहस्य हो गया था। ऐसे वातावरण में कुश की चटाई, ठीक है, कुश की चटाई पर वो बैठे थे भगत जी, अपना मुंह उन्होंने पूरब की तरफ कर रखा था, काली कमली यानी पतला सा एक काला कंबल ओढ़ा था और खंजड़ी लेकर बैठे गा रहे थे। लेखक कहता है गाते गाते वो इतने मग्न हो जाते थे अपनी मस्ती में, ऐसे खो जाते थे कि लगता था ये अभी गाते गाते उठ खड़े होंगे। उनके कमली यानी उनका जो कंबल था वो भी उनके सिर से बार बार सरक जा रहा था क्योंकि उन्हें गाते हुए ध्यान ही नहीं था अपने आसपास का। और लेखक बोलता है इतनी ठंड थी, है ना, माघ के महीने में, जनवरी के महीने में इतनी ठंड थी कि मैं जाड़े से ठंड से कांप रहा था तारों की छाव में। सोचो कितनी सुबह होगी कि तारे भी अभी नहीं हटे थे और तब भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक पड़ते, यानी वो इतने मग्न थे गाने में कि मस्तक पर यानी माथे पर श्रम बिंदु यानी माथे पे पसीना दिखाई देने लगता था। जहां बाकी लोग कांप रहे थे ठंड से, वहां बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीना दिखाई दे रहा था। आगे पढ़िए, गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब वो कह रहे हैं गर्मियों के मौसम में उनकी जो संध्या थी यानी शाम के समय जो वो गाना गाने बैठते थे, वो चाहे कितनी भी उमस हो लेकिन वो उसे शीतलता पहुंचा देती थी, उस शाम को ठंडा कर देती थी। वो अपने घर में ही एक आसन जमाते थे, वहीं गाने बैठते थे और वहीं गांव के जो कुछ प्रेमी थे यानी जिन्हें बाल गोविंद भगत से बहुत लगाव था, वो लोग भी वहां जाके इकट्ठे हो जाते थे और सभी मिलके खंजड़ियां करताल है ना अलग अलग बाजे मिलकर बजाते और गाना गाते थे। कबीर के पद को बाल गोविंद भगत कहते और उसके पीछे पीछे जो उनकी मंडली है वो उसे दोहराती थी, तिहराती थी है ना, यानी दूसरी बार तीसरी बार उसे गाती थी। गाते गाते ये लोग इतने मग्न हो जाते थे कि इनके स्वर ऊपर उठने लगते थे और लोगों के मन भी उसके हिसाब से ऊपर होने लगते थे। लोग अपने तन को भूल जाते थे, मन हावी होने लगता था, यानी तन को भूल जाते थे, शरीर को भूल जाते थे और पूरा का पूरा मन उनका भगत जी के और उनकी मंडली जी के गानों में खोया रहता था। और धीरे 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 वो कहते हैं एक क्षण ऐसा आता था यानी एक पल ऐसा आता था जब ये जो खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत जी हैं वो उठकर नाचने लगते थे और वहां जितने भी लोग होते थे वो भी नृत्यशील हो जाते, यानी कुछ लोगों का शरीर नाच रहा होता था, कुछ लोगों का मन नाच रहा होता था और नाचते नाचते सारा आंगन नृत्य और संगीत के माहौल से ओतप्रोत हो जाता था है ना, यानी पूरे आंगन में लोग नाचने गाने लगते थे, महफिल जम जाती थी एक तरीके से। ठीक है आगे पढ़िए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। ठीक है तो वो क्या बता रहे हैं कि संगीत साधना यानी जो संगीत के प्रति उनकी रुचि थी वो उस दिन देखी गई जिस दिन उनका बेटा मर गया यानी उनके बेटे की मृत्यु हो गई। एकलौता बेटा था, एकमात्र बेटा था जो सुस्त और बोधा सा ही नहीं, कुछ हल्का से जो लोग जिनका दिमाग थोड़े धीरे काम करता है वैसा बेटा था, लेकिन इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और मानते थे और ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि बाल गोविंद भगत का मांगना था कि ऐसे ही लोगों को हमें ज्यादा प्यार करना चाहिए, इन पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये लोग आपकी देखभाल आपके प्यार के हकदार होते हैं। वैसे ही बड़ी खुशी से भगत जी ने अपने बेटे की शादी कराई। पतोहू यानी जो उनकी बहू थी बेटे की पत्नी, वो भी बहुत सुशील और अच्छी मिली थी है ना, वो घर की पूरी प्रबंधिका बन गई थी यानी घर में हर काम कैसे होगा हर चीज का ख्याल रखती थी, भगत जी का भी ख्याल रखती थी और भगत जी को दुनियादारी से घर के कामों से मुक्त कर दिया था कि आप अपना जीवन खुशी खुशी निश्चिंत होकर जिए, पूरा घर मैं संभाल लूंगी। उनका बेटा जब बीमार था तो लोगों को इसकी खबर रखने की फुर्सत नहीं थी यानी लोगों को इससे पूछने की जानकारी हासिल करने से कोई मतलब नहीं था, सब अपने अपने में व्यस्त रहते थे। पर लेखक कहते हैं मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है यानी जब वो मृत्यु हुई तो सबको खबर तुरंत पहुंच गई कि भगत जी का बेटा मर गया है। लेखक कह रहे हैं कि कुतूहलवश यानी उत्सुकता एक जागी और मतलब जानने के लिए कि क्या हुआ है, बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर हम भी उनके घर पहुंचे और देखकर दंग रह गए यानी आश्चर्य से खड़े रह गए कि ये क्या। बेटे को एक चटाई पे लिटा रखा आंगन में, उसकी जो मतलब उसका जो शव है उसे सफेद कपड़े से ढांक रखा है, फूलों को उस पे फूल और तुलसी दर यानी तुलसी के पत्तों को उस पे बिखरा रखा है, सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा से ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब वो क्या कह रहे हैं है ना, अपने बेटे के शव पे उन्होंने तुलसी फूल सब बिखरा दिए थे, पास में एक चिराग जला दिया था और अपने गाने में फिर से वैसे ही व्यस्त थे, जिस मग्न होके जिस तरीके से वो गाते थे वही उनका स्वर, कोई कमी नहीं थी, वैसे ही गा रहे थे। लेकिन जो बहू है उनकी, वो रो रही थी और गांव की अन्य स्त्रियां, अन्य महिलाएं उसे शांत करवा रही थी। गाते गाते बाल गोविंद भगत कभी कभी अपनी बहू के पास जाते और उसे कहते कि बेटा रो मत, उत्सव मनाओ, यानी खुशियां मनाओ। ये तो अच्छी चीज हुई है कि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई, विरहनी, यानी जो आत्मा और परमात्मा का मिलन जरूरी है, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। एक दूसरे के प्रेमी अगर आपस में मिल गए तो इसमें तो हमें आनंद मनाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। तो लेखक बोले, ये दृश्य देख के मैं सोचने लगा कि कहीं भगत जी पागल तो नहीं हो गए हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो पागल नहीं हुए हैं, वो विश्वास हुए हैं, और ये ऐसा विश्वास होता है जो हमेशा मृत्यु पर भी विजयी होता है ना, यानी मृत्यु के सच पर जो अमल कर सकता है ना। सबको पता है मृत्यु होगी, लेकिन इस सच को अपनाना कोई नहीं चाहता, और जो इस सच को खुशी खुशी अपना लेता है वही असल में ज्ञानी है। ठीक है, तो बाकी का जो रेखा चित्र है वो अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।